चाहिए। आज का एक छोटे से अनुभव से शुरुआत कर, कोई एक आत्मा आई मेरे पास, कहा मेरी दो भाभी हैं बड़ी, जो सबसे बड़ी है, उससे सारा परिवार तंग है। ज्ञान लेना भी शुरू किया है, वंडरफुल बात यह है, सुंदर बात। ज्ञान लेना शुरू किया तो जो वहाँ ज्ञान में देख के सीख के आती है, वो घर आके सबको नाचती है। तुम इतने इतने समय से ज्ञान में चल रहे, तुम्हें ये धारणा नहीं, तुम्हें ये नहीं, उसमें भी लड़ाई, अच्छाइयों की लड़ाई। सोचना है इस बात को लेकर, कहा उसके कारण 14 साल हो गए हम सबको सहन करते। माँ कहती है 14 साल का वनवास पता नहीं कब पूरा होगा। कहाँ गलती है? एक अच्छी गहरी बात पे सभी चिंतन करेंगे। गड़बड़ तो है ना कहीं, कि वो आत्मा खुद सबको परेशान करती है, बुरा बोलकर, डांट डपट, क्रोध और दोष सबको देती है कि तुम सब ऐसे हो, खराब हो। कहाँ गलती है? हाँ, अपने को नहीं देखती और अपनी कमियों को जानती नहीं है। बहुत जरूरी है खुशनुमा जीवन के लिए मनुष्य अपनी कमियों को जाने, फिर उन्हें ठीक करे। उंगली जो दूसरों की ओर है ये बदले, वो उंगली कहाँ जाए? अपनी ओर आ जाए कि मुझे कहाँ बदलना है। इस बात पे आप सभी बहुत ध्यान दें कि मुझे स्वयं को बदलना है, अपनी कमियों का रियलाइजेशन हो, अपनी कमियों का पता चले और साथ में अपनी मान्यताओं का भी पता चले। अपनी कमियों का ही पता चलेगा इससे ही काम नहीं चलेगा, इसे निराशा आ सकती है, लेकिन अपनी मान्यताओं का ज्ञान होगा तो निराशा नहीं आएगी। स्वमान बढ़ेगा और कमियां जल्दी ही दूर हो जाएंगी। कौन सी चीज जीवन की खुशनुमा स्थिति को बिगाड़ता है? वो है इसी उदाहरण से क्रोध। क्रोध पर संयम करना बहुत जरूरी है। बहुतों की ऐसी समस्याएं भी हैं कि बाबा तो मिल गया लेकिन परिवार का साथ नहीं, माताओं को बहुत कठिनाई होती है। आप में से भी कई माताएं इन कठिनाइयों से गुजरी होंगी, पति ज्ञान में नहीं, 1-2 साल तो सहयोग दिया, अब तूफान, मैं मर जाऊंगा अब, या तो छोड़ो ज्ञान को, एकदम लड़ाई झगड़ा। क्यों होता है लड़ाई झगड़ा? क्यों होता है? नहीं, पवित्रता के कारण। ऐसे में खुशनुमा रहना सहज है? नहीं है सहज, बहुत मुश्किल है। कहां परिवार में इतना झगड़ा हो जाता है कि पड़ोसियों तक आवाज जाती है, और जब पड़ोसियों तक आवाज जाने लगे तब जरा काम मुश्किल है ना। अपने घर में ही रह जाए तो भी ठीक है। ये जो पहला उदाहरण दिया इसमें भी उसने यही कहा, वो इतनी लड़ाई कर लेती है कि पड़ोसी भी आ जाते हैं, क्या हुआ है भाई, तो फिर से नीचा होता है ना। का सभी ज्ञान में है, उसे छोड़ के अब वो भी आ रही है। कभी कभी जाती थी, ये कहाँ जाते हैं मैं भी तो देखूं, उल्टे भाव से जाती थी, देखिए कहाँ जाते हैं सब। लेकिन धीरे धीरे रस लगने लगा। लेकिन क्रोध बहुत कठिनाई पैदा करता है। और यहाँ प्रश्न ये होता है कि हमारी सहनशीलता की भी कोई सीमा है, तो क्या करें? क्रोध को समाप्त कैसे करेंगे? बोलो, केवल स्वमान से काम नहीं चलेगा। देखो अव्यक्त बाबा ने भी तीन बार तो क्रोध मुक्त अभियान चलवाया छह मास का, कि छह मास में सभी क्रोध से मुक्त हो जाएं और सबने अच्छा पुरुषार्थ भी किया, ध्यान दिया। ऐसा नहीं कि नहीं किया, अच्छा ध्यान दिया, और बहुत लोग इसको छोड़ने में सफल भी हुए। एक डायरेक्टर की कहानी सुना दूं आपको, जब बाबा ने लास्ट में, साल तो कई हो गए, क्रोध मुक्त जीवन बनाने के लिए बहुत प्रेरणा दी, और याद हो आपको बाबा ने वेरी लास्ट में ये कहा था कि जैसे ये प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा कुमारियां पवित्र बनाती है, वैसे ये भी प्रसिद्ध हो जाए कि ब्रह्मा कुमारियां क्रोध छुड़ाती हैं। तो एक डायरेक्टर, उसने प्रतिज्ञा कर ली मुझे शांत रहना है। उसका लंबा छोटा डिपार्टमेंट, सब उससे डरते थे। प्रतिज्ञा की, पहला दिन चुप, अब सब घबराए ऑफिस में, चुप रहने से तो घबराते हैं ना कि साहब को कुछ हो गया है, या घर में ट्रेजडी हुई, किसी की मृत्यु हुई, कुछ हुआ जरूर है। साहब चुपचाप अपना चक्कर लगाया, काम किया, सब 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 एकदम कुछ हुआ है भाई। दूसरा दिन आया, दूसरा दिन भी साहब चुप, वो खुद अनुभव सुना रहे थे। अब लोगों में खुसर पुसर के भाई क्या हुआ है, कोई नहीं बोला, डरते थे, ऑफिसर होते हैं ना, और नीचे उनके पांच सात। तीसरा दिन हुआ, फिर वो चुप, तो आखिर दो ऑफिसर आए कि सर क्या हो गया है, कुछ मदद चाहिए तो बताओ हमारी, हम आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, क्या हुआ है। तब वो हंसा और उसने बताया कि भाई मैंने क्रोध को छोड़ने का पूरा संकल्प कर लिया है। अब देखो अनुभव कितने अच्छे हुए उसके, कि पहले वो क्रोध करता था और लोग डरते थे, लेकिन काम नहीं होता था, क्योंकि क्रोध करने से जब दूसरा व्यक्ति डरता है तो उसकी कार्य शक्ति कमजोर पड़ जाती है। आपके घर में नौकरानी काम करती हो, आप उससे क्रोध करें, उसे डराएं, तो वो आधा काम गड़बड़ करेगी, गलती करती रहेगी। अब जैसे ही वो शांत हुआ तो बता रहा था कि मेरे लिए पूरे डिपार्टमेंट में पहले था भय और अब हो गया प्यार और सम्मान, और सब लोग क्या हुआ होगा फिर, अच्छा काम करने लगे। मुझे चिल्लाने की, उन्हें डांटने की, क्रोध करने की जरूरत नहीं थी। उससे पहले मैं समझता था क्रोध के बिना ये सब काम नहीं करेंगे, अब समझ में आ गया क्रोध से सबका काम बिगड़ा था, क्रोध के बिना सब अच्छा काम कर रहे हैं। तो घरों में भी क्रोध से मुक्त होना है, कुछ विधि आज इसकी निकाल लें। क्रोध क्यों आता है, इच्छा पूरी नहीं होती, नहीं ईर्ष्या में नहीं, कोई हमारी बात नहीं मानता, कामनाएं बहुत होती है ना, बच्चे बात माने, बच्चे पढ़े, अच्छी कामनाएं होती हैं, बच्चे ठीक ठीक रहे, वो नहीं करते तो क्रोध आता है। हाँ पहले है कामनाएं क्रोध को जन्म देती है, कोई बहुत निंदा करे, अपमान करे तो क्रोध आता है। किससे जीतेंगे क्रोध को, सहनशीलता बाद में आएगी, पहली जरूरत पड़ती है तुरंत रिएक्शन न हो। बच्चे नहीं मान रहे हैं, तुरंत गुस्सा गया, अब जो ब्राह्मण बन गए उनको इतना कंट्रोल अपने पे होना है कि तुरंत रिएक्शन नहीं, कि देरी न लगे, फट से क्रोध आ जाए, इतना क्रोध ब्राह्मणों के लिए खतरनाक, क्या नुकसान होगा क्रोध से? शक्तियां नष्ट होंगी, स्थिति बिगड़ेगी। तीसरा बड़ा नुकसान, हाँ नहीं, ये और नुकसान अपने को होगा, एकाग्रता खत्म हो जाएगी, काम भी बिगड़ेंगे, संबंध भी बिगड़ेंगे। चलो संबंध न भी बिगड़े, माँ बच्चों पे गुस्सा कर रही है, एकाग्रता बिगड़ जाएगी। गुस्सा आ जाए और फिर कोई सोचे मैं योग कर लूं, होगा? बिल्कुल, मन टिकेगा नहीं, मन शांत नहीं होगा, क्योंकि हम आत्मा की नेचर के विपरीत चले गए। उसकी नेचर है शांति और हम चले गए उसके विपरीत। इसलिए पहले तो क्रोध के नुकसानों को ध्यान में रखते हुए अपने को समझाना है कि नहीं। मान लो कोई व्यक्ति हमें गाली दे गया, उसने मान लो हमारा नुकसान भी कर दिया, तो उससे बड़ा नुकसान है क्रोध। क्रोध उससे कहीं बड़ा नुकसान है, ये ध्यान रखेंगे। एक प्रैक्टिकल फायदा विधि मैं आपके सामने रखता हूँ। देखो, सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारे पास पहले 10 मिनट जीवन का बहुत सुंदर समय होता है, ये सभी भाई बहने जान लें। उस टाइम हम जितने अच्छे अभ्यास कर सकें, 10 मिनट जितने सुंदर संकल्प कर सकें, उसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होगा। पहले मैं क्रोध से हटकर कुछ कह दूं, तो सवेरे उठते ही क्या संकल्प करना चाहिए? क्रोध से हटके करेंगे पहले, श्याम स्वरूप पे बाद में आएंगे। कभी नींद ही आ जाए करते ही, नींद आ सकती है ना, मैं श्याम स्वरूप हूँ, सो जाऊं। इसे हट के कुछ करें ताकि आत्मा जग जाए। हाँ, मैं इसको इस तरह कहता हूँ कि सवेरे उठने के बाद खुद को जगाओ। एक तो नींद से जग गए, अब जगाओ और पहला संकल्प करना बाबा को गुड मॉर्निंग करके, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। बिल्कुल खुले मन से। एक माता बैठी थी, कहा मैं क्लास करा रहा था, हाँ कल ज्ञान सरोवर में, मैं उनसे पूछ रहा था अपने भाग्य का वर्णन करो। याद करने के हम अलग अलग तरीके जरा माताओं को सजेस्ट कर देते हैं, नहीं तो माताएं सोचते हैं योग लगता नहीं, योग लगता नहीं, परम धाम में लगा रहे लगता नहीं। तो उसमें हमने किया था कि अपने भाग्य को स्मृति में लाते हुए बाबा से रूरियान करो, थैंक्स दो उसे। तो एक माता से जब पूछा तुम्हारा तुम्हें क्या मिला बाबा से, उन्हें बड़े मजे से उत्तर दिया, मैं बहुत धनवान हूँ। मैंने सबको कहा, मैंने कहा माता जी खड़ी हो जाओ, देख लें जरा आपको सबसे ज्यादा धनवान कौन है दुनिया में। उसको नशा, मैं बहुत धनवान हूँ। और ये सच है कि हमसे बड़ा धनवान, ऐसे खजाने जिनकी कीमत नहीं आती जाती। आज अखबार में एक आया कि एक बहुत बड़ा हीरा मिला है, हीरा है 40 करोड़ कीमत आंकी जा रही, 60 से शुरू होगी, 60 करोड़ का हीरा, और वो हीरा आपके महलों में लगा हुआ एक छोटा सा। सोच लो माता है कितने धनवान होंगे, ऐसे कितने लगे होंगे, वो तो एक मैंने कहा। बाबा ने कभी कहा मुरली में साकार में, जितनी सारी मुंबई की संपत्ति है ना, उतने तो तुम्हारे महल में हीरे लगे होंगे। हम सोचते बाबा ऐसे गप लगाता है, खुश करता है हमें, लेकिन पता चलता है जब बड़े बड़े हीरे निकलते हैं और उनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है, तो सबसे बड़ा धन है खुशी। सबसे बड़ा धन है शांति, सबसे बड़ा धन है रात को नींद आ जाए ठीक से, है या नहीं? जिनको नींद नहीं आती उनसे पूछो नींद कितना बड़ा धन है, वो बताएंगे। ऐसे भी लोग मैंने देखे जो ये कहते हैं हमारा सारा धन ले लो हमें सुला दो, तो सबसे बड़ी संपत्ति किनके पास है? सुख शांति पवित्रता, जीवन में कितना अच्छा हो गया, कई बोझ ले लिए बाबा ने जो बोझ डॉक्टर नहीं ले सकते। देखो अभी एक बहुत अच्छा अनुभव, पुणे से आए हम परसों ही शाम को, बच्ची थी बहुत लोग थे वहाँ 2000, एक लड़की को लाया गया 6 या 7 साल की लड़की होगी, बड़ी आकर्षित हो रही वो स्टेज पे आने के लिए आई, उसका बाप साथ। तो मुझे तो ख्याल नहीं था, कहा इस लड़की के हार्ट में 8 mm का छेद था, हार्ट में छेद होना माना उसका इलाज लगभग होता नहीं, जब तक जिए ठीक है मृत्यु। और उन्होंने जो ये योग के छोटे छोटे प्रयोग किए तो छेद भर गया, बहुत जल्दी भर गया 21 दिन में ही। तो उसको लाए वो इतनी खुश, इतनी खुश, उसको क्या पता था उसके हाथ में छेद है, उसको इतना पता कि छेद था भर गया, वो बहुत खुश है। छेद से क्या नुकसान होना उसको ये भी नहीं पता। तो कितनी बड़ी संपदा है हमारे पास, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय शक्तियाँ, ये छोटी संपत्ति नहीं। हीरो की तो कीमत आंखें भी जा सकती है, शक्तियों की कीमत, खुशी की कीमत तो पता ही नहीं चलेगा कितनी है। तो फिर आ जाए वही सवेरे उठकर सुंदर सुंदर संकल्प किया करें, इस जीवन में मुझे क्या मिला। मैं एक उदाहरण दूं, और आजकल फिल्मों में हीरो एक्टर कौन है सबसे ज्यादा फेमस? मुझे नहीं पता, मैं किसी को नहीं जानता, आपको ही बताना कौन है, कौन है, किसको पता है? अरे मैं उदाहरण दूंगा, इसमें ये नहीं कि आपको पता है तो खराब है, मुझे पता नहीं भी तो मैं नाम बता देता। भाई बताओ है? कोई कपूर कह रहा है, कोई अमिताभ बच्चन। अच्छा, अमिताभ बच्चन कह दे किसी माता को जो उसको जानती हो कि मैं आपके घर में आके रहूंगा कुछ दिन, कितनी खुशी होगी, कितनों को बताएंगे? फोन ही चलता रहेगा फटाफट, फलाना एक्टर हीरो एक्टर हमारे घर में आ रहा और कहता है यही खाऊंगा यही रहूंगा, होगा। सबसे बड़ा है एक्टर शिव बाबा, है ना, हीरो एक्टर, सुप्रीम एक्टर, क्रिएटर भी और डायरेक्टर भी, और वो कहता है मैं सदा तुम्हारे ही घर में रहूंगा। मेहमान बनकर आ गया हमारे घर में, सोच के देखो, रहता है सदा ही, और उसके रहने से तकलीफ भी नहीं। कोई एक्स्ट्रा आए तो तकलीफ भी होगी, उसको अच्छा खिलाओ कुछ कुछ करो, ये तो आता है तो आनंद ही आनंद छा जाएगा। तो सवेरे उठकर अपनी प्राप्तियों को याद करना और ऊपर हाथ करके बाबा को थैंक्स देना, तुमने हमें सब कुछ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नहीं बाबा ये नहीं दिया, पैसा कम रह गया, तुम तो मिले लेकिन पैसा कम रह गया, तुम तो मिले पर पति अच्छा नहीं है, तुम तो मिले बच्चे बहुत तंग करते हैं मुझे, ये नहीं, तुमने हमें सब कुछ दिया, आपको लाखों लाखों बार शुक्रिया। शरीर दिया, तुम सोचो मुझे कैसा शरीर दिया, छोटा सा टूटा फूटा, ये नहीं, मस्त रहना, लोग देखें इस जैसा कुछ कोई नहीं, अपने शरीरों का भान भूल जाए तुम्हें देख के, होगा नहीं, क्योंकि जो चीज जीवन में बदली नहीं जा सकती, देखो इधर लाइन खाली है, बैठ जाओ, जो चीज जीवन में बदली नहीं जा सकती, ध्यान से सुनो सभी, अब जिस चीज को हम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और उसके लिए बाबा को थैंक्स दो। एक व्यक्ति एक आंख वाला, वो इसलिए खुश था, एक तो है, कईयों को तो दोनों ही नहीं है, और एक व्यक्ति एक आंख वाला इसलिए दुखी था कि मुझे एक आंख है। देखो सब दोनों वही हैं, मुझे एक आंख है, एक व्यक्ति बहुत खुश है, पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ, सब काम हो रहा है, दूसरा इसलिए दुखी है कि एक ही आंख है। सोचने की बात है ना, सोचने की बात है, तो जो कुछ हमारे पास है उसके लिए बाबा को सच्चे मन से थैंक्स दे, तो वो सब चीजें बढ़ती जाएंगी। बाबा आपने मुझे बहुत धन दिया, भूखे तो नहीं है, गरीब है, कोई बात नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही है, घर भी है छोटा मोटा, खाना भी मिल रहा है, बाबा तुमने हमें बहुत धन दिया, तो आप देखेंगे धन बढ़ने लगेगा। और जो रोते रहते हैं उठते ही, बाबा मैं तो आपकी गरीब बच्ची हूँ, तो बाबा क्या कहेगा, तथास्तु। बाबा को हमारी गरीबी अमीरी से क्या लेना देना, वो तो हम जिम्मेदार है ना उसके, वो हमारे कर्मों का परिणाम है। बाबा तो हमें मदद करता है, हमें बहुत खुश देखना चाहता है। अब आ जाओ क्रोध पर, जो संकल्प सवेरे ही हम करते हैं वो सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन पर, उसमें भी आप बहुत ध्यान देंगे, जो संकल्प हमने पहला पहला किया, सोच लें सभी, एकदम उठते ही वो तो हमारा जीवन ही हो जाएगा। 7 दिन लगातार करके देखो जरा, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। लेकिन 7 दिन लगातार हो, ऐसे नहीं एक दिन छूट गया फिर कर लेंगे एक दिन और, ये नहीं, छूट गया तो फिर वहाँ से 7 दिन, आपको पता चलेगा सचमुच आप जैसा भाग्यवान कोई नहीं दुनिया में। मेरे मैं बहुत धनवान हूँ, उठते ही बाबा को थैंक्स दो, 7 दिन करो और देखो आपको पास धन की बरसात होती है या नहीं। लेकिन इतनी बरसात ना हो जाए कि आप ज्ञान ही छोड़ दें, धन जब बढ़ता है तो माया भी बढ़ती है ना, पोतों के साथ ऐसा हुआ, धन बढ़ा तो माया बढ़ी। पहले कहते थे बाबा पैसा चाहिए बहुत, आपकी सेवा करूंगा, पैसा आ गया तो बाबा की सेवा नहीं माया की सेवा करने लगे, ये बहुतों के साथ हुआ है। इसलिए धन उतना ही ठीक है जितने में आराम से जिंदगी जिए, ठीक है या नहीं, या साहूकार बन के ज्यादा सेवा करेंगे, साहूकार वाले सेवा नहीं करते हैं, फिर तो कहेंगे हम क्यों सेवा में जाएं, हमारे पास सेवा में लोग आते हैं। क्रोध मुक्त होना है, ये बहुत अच्छी विधि है, जिसको थोड़ा क्रोध है वो 7 दिन कर लें, जिसको ज्यादा है वो 21 दिन करें। पहला संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इससे क्या होगा, शक्तियाँ जागृत हो गई। दूसरा संकल्प, मैं विजयी रतन हूँ, इससे क्या होगा, वो शक्तियाँ जो जगी हैं वो अब हमें विजय दिलाने के लिए तैयार है। लिख समझ ले अच्छी तरह, मैं विजयी रतन हूँ, तो जो शक्तियाँ हमने जगाई वो विजय दिलाने के लिए तैयार। तीसरा संकल्प करो, मैं क्रोध मुक्त हूँ, अब विजय होगी किससे, क्रोध पर, तीन संकल्प का साथ, फिर चौथा संकल्प करना मेरा चित शांत है, तो क्रोध हटेगा, शांति बढ़ेगी। सात बार करना है, सात बार रोज, सात दिन तक। पहला संकल्प, दूसरा, तीसरा, चौथा, मेरा चित्त शांत। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं हमेशा एक बात सबको कहता हूँ, अपने ब्राह्मणों को, वो कईयों को अच्छी न भी लगती हो, कि समय अनुसार हमें ज्ञान देने के तरीके को बदलते रहना चाहिए। जैसा जैसा समय, वैसा वैसा ज्ञान। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ सबको कहने की आदत पड़ गई है। 20 साल हो गए कहते कहते मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और शांति आई नहीं। शांति किसी शांति देवी के घर में चली गई, ये बहुतों के साथ हुआ, तो ये नहीं। अब चेंज करो, मेरा चित सदा के लिए शांत। बाबा तुमने मेरा चित सदा के लिए शांत कर दिया, मेरा चित पूरी तरह शांत है। ये कर सकते हैं, मैं शीतलता की देवी हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ, क्योंकि क्रोध सहनशीलता से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे सुंदर संकल्प सवेरे ही करेंगे, और ये केवल संकल्प न रह जाए, इन्हें हम स्वीकार करें, मैं हूँ, इसको कहते हैं फीलिंग में लाए, अनुभव में लाए, मैं हूँ, मैं क्रोध मुक्त हूँ। यहाँ मन में डबल संकल्प न चले, हम कह रहे मैं क्रोध मुक्त हूँ, और दूसरा मन कहे नहीं हो, कहाँ हो क्रोध मुक्त, क्रोध ही तो कर रहे हो, उसी से तो छूटना है तुम्हें। लेकिन सच्चे मन से ये संकल्प कर दो, मैं क्रोध मुक्त हूँ, तो इसमें क्या होता है, उस टाइम हमारा अंतर मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है, वो स्वीकार कर लेगा ये क्रोध मुक्त है। बस मुझे क्रोध छोड़ना है, ये तो छूटता नहीं है, फिर सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेता है, ये कह रहे हैं तो छूटता नहीं है, ठीक है, प्रभास तो ठीक है ये बात। अब हमें खुशनुमा जीवन जीना है। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, एक क्लास में तो पूरा नहीं होगा, हमें दूसरी बात एक और आपके सामने रखता हूँ, और सभी उस पर भी बहुत ध्यान देंगे, वो है निगेटिव चिंतन नहीं, निगेटिव अप्रोच नहीं। अप्रोच को कहते हैं हमारा जो कार्य करने का तरीका है, व्यवहार का तरीका है, वो निगेटिव ना हो। मान लो बच्चे हैं आपके घर में, आप सदा ही उन्हें कहती हैं ये सुधरेंगे नहीं, कई कई माताएं तो गुस्से में और भी कह देते हैं, ये कलयुग की औलाद है ना, ये सुधरेंगे नहीं, उन्हें भूल जाता है मेरी औलाद भी है, ये कलयुग की औलाद है, ये सुधरेंगे नहीं। बच्चे भी सुनते रहते हैं मम्मी कह रही है ये सुधरेंगे नहीं, तो बच्चों में पक्का हो जाता है ना, मम्मी स्टैंप लगा रही है कि सुधरेंगे नहीं, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं ये बात सुन के। तो निगेटिव अप्रोच न हो, हमेशा पॉजिटिव। निगेटिव सोचने की आदत सबसे खतरनाक है। क्यों खतरनाक है, एक बहुत अच्छी और गुह्य बात आपके सामने, जो कुछ हम सोचते हैं, इस बात पे सभी ध्यान दें, और एक बार सुनने से और नहीं पूरी होती है, आप अपने को जरा बार बार सुनाएंगे कुछ दिन तक, कम से कम 100 दिन तक कोई भी पुरुषार्थी इस पे काम करे, और ये निगेटिव नहीं होना है, ये संकल्प दे अपने को, सवेरे उठते ही संकल्प दे, मुझे निगेटिव नहीं रहना है, मुझे निगेटिव नहीं सोचना है, मैं तो मार आत्मा हूँ, निगेटिविटी से मेरा कोई लेना देना नहीं। क्या होता है निगेटिव सोचने से? जो कुछ भी हम सोचते हैं उसके वाइब्रेशन आत्मा से चार ओर फैलते हैं, और पहले कहाँ जाते हैं? वो ब्रेन में, दिमाग में। तो मान लो कमजोर संकल्प कोई कर रहा है, ईर्ष्या के संकल्प, बदले के संकल्प, क्रोध के संकल्प, किसी ने कुछ कह दिया है उसके लिए संकल्प, तो उसके वाइब्रेशंस पहले कहाँ जाएंगे? माइंड नहीं कहते इसे, ब्रेन, दिमाग में जाएंगे। तो दिमाग की रचना बहुत वंडरफुल है, इतनी वंडरफुल है कि जितनी वंडरफुल संसार की रचना है उतनी वंडरफुल मनुष्य के ब्रेन की रचना है, और इसको कोई भी आज तक जान नहीं पाया। सारे संसार के डॉक्टर मिलकर भी ब्रेन को समझ नहीं पाए आज तक, इतनी गुह्य गंभीर इसकी रचना है। अब वो निगेटिव वाइब्रेशंस जा रहे हैं, आप ऐसा सोच लो धुआं जा रहा है यहाँ से ब्रेन में, न जाने क्या क्या करता होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। गंदगी जा रही, बदबू जा रही है, निगेटिव एनर्जी माना बदबू, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या नुकसान हो रहा है। इससे जन्म मिलता है अनेक बीमारियों को। ये वाइब्रेशन फिर बाहर फैलते हैं, वातावरण में जाते हैं, आप अपने घर में हैं तो घर में फैलते हैं, इससे बढ़ती हैं समस्याएं। माँ के निगेटिव वाइब्रेशंस का असर जाता है बच्चों पर सीधा, आपको पता हो या ना पता हो, आप सोचते हो या ना सोचते हो, सीधे आपके वाइब्रेशंस पहले आपके बच्चों पर जा रहे हैं। इसलिए निगेटिव नहीं, इसको अपने जीवन को समस्याओं से मुक्त करना हो, सोच लें आप हो निगेटिव न हो। एक स्वचिंतन का काम आपको दे देता हूँ, निगेटिव का सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, कहाँ कहाँ मनुष्य निगेटिव सोचता है, कहाँ कहाँ उसे उनको पॉजिटिव करना चाहिए। सेवाओं में है आप, मान लो क्लास हो रही है बहुत अच्छी, और अचानक कहा जाता है कि दो माताओं को ये काम आ गया, अचानक आप क्लास छोड़ो ये काम करो, और आपको क्लास करने की बहुत रुचि थी, अब क्या चलेगा अंदर में? निगेटिव कईयों को चलेगा, सोचेंगे क्या सेवा में आए थे, सुख लेने के लिए, सारा दिन काम ही काम, इसे तो घर ही अच्छे थे, कुछ फ्री तो टाइम मिलता था, ये तो क्लास के टाइम भी नहीं फ्री रहने देते। संकल्प चल रहे हैं, उधर काम भी कर रहे हैं और संकल्प भी चल रहे हैं, काम हो रहा है लेकिन मन परेशान हो रहा है, नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, तो नुकसान तो हो गया, फायदा ये नहीं हुआ कि वहीं बैठे हैं सोचने के कारण क्लास में तो नहीं आ सकते, रहेंगे तो वही ना, तो देखो डबल फायदा, क्लास भी मिस और जो सेवा मिली उसकी खुशी भी मिस, दो नुकसान हो गए ना। और दूसरी दो आत्माएं हैं, उन्हें कहा जाता है चलो सेवा है आज बहुत जरूरी, क्लास तो होती रहेगी, अब वो बिल्कुल सहज भाव से चलो सेवा कर लेते हैं, फिर दूसरी बहनों से क्लास का साथ सुन लेंगे, बाबा हमें बल देगा, तो उनकी भी स्थिति अच्छी है, और फिर जो कुछ उन्हें सुनाया जाएगा वो इतने ध्यान से सुनेंगे कि वो उनके जीवन में आ जाएगा, साथ साथ बाबा का बल भी मिलेगा, सेवा भी हो गई। ये पॉजिटिव सोचने के परिणाम। तो पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में अच्छा सोचकर अपनी स्थिति को अच्छा रखते हैं, और जिनको निगेटिव सोचने की आदत है वो क्लास में बैठे बैठे भी निगेटिव सोचेंगे,
तो क्लास का भी सुख नहीं मिलेगा और सेवा भी छोड़ आए उसका भी सुख नहीं मिलेगा। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, तब से ही मैंने सीखा था, बात 40 साल पहले की है। तो बाबा आते ही रहते थे, उन दिनों बाबा के प्रोग्राम ऐसे नहीं थे फिक्स ऑफिशियल, बाबा हफ्ते में 2 बार भी आ जाएंगे, कभी कभी 3 बार भी आ जाएंगे। तो म्यूजियम बना था हमारा, तो म्यूजियम की सेवा में हम सब लोग यहाँ से रोज जाया करते थे, बाहर के गाइड सेवाधारी ये सब तब नहीं आते थे। तो जैसे ही मैं क्लास में पहुंचा, दीदी होती थी, दीदी ने मुझे इशारा करके बुलाया, योग चालू हुआ था, बुलाया दादी आई थी, कहा सुनो, एक और को बुलाया कि तुम दोनों म्यूजियम में जाओ गाइड करना है। अभी अव्यक्त बाबा का तो आप जानते ही हैं, और मेरे लिए वो सबसे बड़ा आनंद। तो हम दीदी को ना तो नहीं कह सकते थे, हम चले गए, लेकिन नहीं संकल्प कुछ भी, खुशी गुम हो गई, न वहाँ मन लग रहा और यहाँ तो थे ही नहीं, ध्यान सारा इधर आया हुआ, तो न वहाँ न यहाँ, बिल्कुल मजा नहीं आया। आ गए, आके मुरली पढ़ी, दूसरों लिखी थी उनसे लेके हमने पढ़ी। तो मैंने सोचा देखो हम खुशी से जाए, जाना तो हमें है, दीदी को हम ना कर ही नहीं सकते थे, जाना तो हमें है, तो क्यों ना खुशी से जाए, तो वहाँ की सेवा का भी आनंद लें, स्थिति का भी आनंद लें और बल भी मिले। उन्हें ऐसा लगा कि बल भी नहीं मिला बाबा का। यहाँ से हमने सीखा जो भी सेवा सामने आ जाए उसको स्वीकार करके उसका आनंद लेना है, तो बहुत अच्छा अनुभव हो गया। तब ऐसे ही होता था कि 2-3 को हर बार जाना ही पड़ता था, क्योंकि म्यूजियम तो रोज चलता था और म्यूजियम में शाम को बहुत पार्टियां आती हैं, सनसेट से सब लोग लौटते हैं, भीड़ होती, 1000 लोग एक साथ आ जाते होंगे। तो हमेशा अपने जीवन को खुशनुमा रखने के लिए पॉजिटिव सोचना है। माताओं ने खाना बनाया, 2-3 मेहमान आए हुए हैं, सब तैयार हो गया, 3 और आ गए उस टाइम जब आप थक गए थे। अब थक गए थे पूरी तरह, सोच रहे थे बस जल्दी ये मेहमान जाएं, हम आराम करें, ज्ञान योग करें, 3 और आ गए, क्या होगी मनोस्थिति सब जानते हैं क्या होगी, लेकिन आप स्वीकार कर लो। अब ये मेहमान आए, इनको ये तो नहीं कह सकते क्यों आए, अतिथि क्यों बने, तिथि पे आना चाहिए, जिनाती थी कि आ गए, अभी आ गए, ठीक है वेलकम। संकल्प करो अच्छा, जितना खाना हमने बनाया ये सब भी इसी में तृप्त हो जाए, देखो आपका मन शांत होगा और अनुभव होगा उसी खाने में सब तृप्त हो जाएंगे, वो भी खुश होके जाएंगे, हम भी खुश रहेंगे। तो हर जगह अपने को पॉजिटिव करने से तन भी थकता नहीं है, तन भी तंदुरुस्त रहता है, और काम ज्यादा भी हो तो थकान नहीं होती। माताओं का मैं सुनता हूँ, माता को बहुत बीमारी, बच्चा आया स्कूल से, मम्मी बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी, मुझे तो ये खाना है, बेचारी अपनी बुखार को भूल के उसके लिए खाना बनाया, कोई थकान नहीं, कुछ मेरा बच्चा है ना, उसको भूखा तो माँ देख नहीं सकती, तो अपना बुखार भूल गया। मानसिक स्थिति ही हमारे तन को भी फ्रेश रखती है। दूसरी ये बात आप ध्यान रखें और आज ही अपने को चेंज करें, बहुत कैसा होना है, कैसा होना है, पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। मुझे एक कहानी और याद आ रही है, हम इस पे कभी कभी क्लास भी करा देते हैं। आप यहाँ सेवा में आई, 2 मास रहे, आपने बहुत आनंद लिया, सच्चे मन से सेवा की, लेकिन चलते हुए आपके इंचार्ज ने कह दिया आपने ठीक काम नहीं किया। अब माता जी की खुशी गुम, अनेक संकल्प, क्योंकि समय ऐसा जा रहे हैं, आप आपको खुशी से लौटना चाहिए, आनंद से लौटना चाहिए, बिल्कुल प्रसन्न हो, आपको डर भी है ये कहीं मेरी दीदी को भी न कह दे कि इनको अगली बार न भेजना, इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन आपको पूरी खातरी है, कन्विंस है आप कि हमने सच्चे दिल से सेवा की है, तो क्या होना चाहिए? अपनी सत्यता में विश्वास, इसकी बहुत जरूरत है। संगठनों में रहते हुए घरों में भी बहुत लोगों को अपनी सत्यता में विश्वास नहीं रहता, और उन्हें विश्वास रहता है दूसरे के शब्दों में कि इसने कह दिया ना कि तुमने ठीक सेवा नहीं की, तो रो ही रही माता जी, कईयों के केस हो जाते थे, रो ही रही है हमने इतने दिल से सेवा की, पता नहीं किसने इनको हमारी शिकायत कर दी कि तुमने अच्छी सेवा नहीं की। फिर मैंने समझाया जो भाई ड्यूटी पे था इंचार्ज, मैंने कहा भाई किसी की सुन भी लो, और जब वो माता जा रही हो, खास जब जा रही हो, तब उसको ऐसी बात न कहना कि तुमने अच्छी सेवा नहीं की, कहना ये तो 3 दिन पहले कह देना ताकि 3 दिन में वो ठीक ठाक तो हो जाए। लेकिन स्ट्रांग हमें इतना होना है कि हमने ठीक सेवा की है, हमें पता है, हम अपनी सत्यता में विश्वास रखें। एक कहानी और सुना दूं, 5 मिनट है, माताओं की। मधुबन में था मैं, सेवाधारियों को भी संभालता था, तो एक माता है, मुझे 4 मास रहना है। मैंने कहा 4 मास तो बहुत ज्यादा है, आप थोड़ा कम रह लो, 2 मास रह लो, ठीक है आगे देखेंगे, रहो, माने नहीं। मैंने कहा क्या ऐसी बात है, घर में बहू बहुत तंग करती है, शांति के लिए आई हूँ यहाँ, 4 मास तो शांति में रहना चाहती हूँ। हफ्ता ही रही होगी, फिर मेरे पास आई, मुझे तो यहाँ से जाना है। मैंने कहा क्या हुआ, तो सुनो क्या हुआ था। तब ये जो हमारे ऊपर कमरे हैं ना, जो 25-25 के बने, ये पूरा हॉल था, एक एक में 70-70 माताएं रहती थी। अब माताएं कोई सफाई से रहती है, किसी को सफाई नहीं आती, कोई गंदगी से रहती है, तो उसके बिस्तर के पास से कोई गुजरी, चप्पल लेके उसकी चप्पल बिस्तर को लग गई, उसने देख लिया, उसकी उसकी लड़ाई हुई, मेरे बिस्तर को चप्पल क्यों लगाई। दूसरे दिन क्या हुआ, माता जी नहा के आ रही थी, उसका तौलिया जो था गीला वो उसके उसके गिर गया, फिर इसकी लड़ाई हुई, तुमने अपना मैला तौलिया मेरे ऊपर, मेरे बिस्तर पे क्यों गिराया। वो कह रही मैं नहीं गिराया, खिसक के गिर गया, मैं तो बहुत ध्यान से चल रही थी। अब ये माता छू छू वाली थी, छू छू समझते है ना, कुछ माताएं होती हैं छू छू वाली, कहा मुझे तो जाना है, मैं यहाँ बहुत दुखी हो गई, मेरे भाग में शांति है ही नहीं। मैंने उसको समझाया शांति भाग्य की बात नहीं, तुम्हारे विचारों की बात है, न बहू तुम्हें अशांत करती न कोई और, और समझ लो जो मधुबन में शांत नहीं हुआ वो नहीं, चारों युगों में शांत नहीं होगा। आप अपने विचारों को बदल लो, उसका तौलिया गिर गया था, कह देती है अरे बहन तुम्हारा तौलिया गिर गया उठा लो, खत्म बात, किसी का चप्पल लग गई कह देती है ध्यान से चलना, चप्पल मैली होती है नहीं लगाना, बस खत्म बात। तो शांति और अशांति अपने हाथ में, परिवार में रहने वालों की भी यही बात है, अगर कोई शांत नहीं है तो उसकी गलती उसकी अपनी है, हम यदि अशांत हैं तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। इसे सबसे पहले एक माता ने बात सुनाई थी, खुशनुमा जीवन के लिए चाहिए सरलता, बहुत हल्के रहना। अब जब संगठन में रहते हैं, कोई कैसा कोई कैसा, हम अपनी स्थिति क्यों बिगाड़ लें, हम गुस्सा करने लगे। आज भी मैं ऊपर आया क्लास कराने, 10:30 का गीत बजना था, उसने बजाने में देर कर दी, 5-7 मिनट बजी नहीं रहा, तो इतने में एक व्यक्ति को खराटे आने लगे जोर से, योग में सब उसे देखें, मैं तो नहीं देख सकता था, मैं स्टेज पे था। और आवाज तो कान तो खुले हैं, एक ही कर्म इंद्रिय ऐसी जो सदा खुली रहती है, आंख भी बंद हो जाती है, मुंह भी बंद कर लेते हैं, नाक को भी दबा के बंद कर लेते हैं, लेकिन कान सदा खुले हैं। तो जब योग पूरा हो गया, मैंने उसकी तरफ देखा, बेचारे को बड़ी लज्जा आ रही थी, हालांकि मैं उसे जानता हूँ, लेकिन वो मुस्कुराया भी नहीं, क्योंकि सबने उसे देखा था, खाके भी जोर से आ रहे थे, धीमे नहीं। तो संगठन में ये सब बात होती, अब हम उस पर गुस्सा करें, इससे तो कुछ फायदा नहीं होगा ना, वो तो सो लिया बेचारा, उन्हें तो नींद का सुख ले लिया, हम बिना मतलब गुस्सा करके अपना सुख भी खत्म कर लें। तो हमें समझदारी से चलना चाहिए, बहुत हल्के रहना चाहिए, और ये लक्ष्य बना लें कि हमें अपने जीवन को स्वयं खुशहाली से भरना है, कोई और नहीं भरेगा, हम स्वयं। ओम शांति।